नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 11 वर्षों में अपनी क्षमता को पहचाना है और इससे सरकार साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले किए, 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों की चीन द्वारा की गई आलोचना को खारिज किया। और महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 11 वर्षों में अपनी शक्ति और क्षमताओं को पहचान लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इसे साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने ये बात कही।
हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, तत्त्वम असि, यानी जिस ब्रह्म की खोज में हम निकले हैं वो हम ही हैं, वो हमारे भीतर ही है। जो सामर्थ्य हमारे भीतर है उसे हमें पहचानना है। बीते 11 वर्षों में भारत ने अपना वही सामर्थ्य पहचाना है और इस सामर्थ्य को सशक्त करने के लिए आज देश निरंतर प्रयास कर रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब नीतिगत गतिरोध से मुक्त है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में देश के कृषि, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस समझौते में किसानों, डेयरी, मुर्गी पालन, मछुआरों और हथकरघा क्षेत्रों से संबंधित सभी संवेदनशील मुद्दों को ध्यान में रखा गया है।
ये डील हमारे हितों में थी, हमारे सभी सेंसिटिव इश्यूज, किसानों के, डेयरी के, पोल्ट्री के, फिशरमैन के, एमएसएमई के, विश्वकर्मा के, हमारे हथकरघा के साथ जुड़े हुए क्षेत्र के, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये डील करी गई थी।
छठा भारत ब्रिटेन गृह मंत्रालय संवाद आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने वर्तमान सहयोग का आकलन किया और आतंक तथा संगठित अपराधों के खिलाफ सक्रिय सहयोग के लिए आपसी हितों और तालमेल के अन्य क्षेत्रों की पहचान की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ ईरान की अप्रत्यक्ष वार्ता अब तक की सबसे गहन और लंबी वार्ताओं में से एक है। एक रिपोर्ट।
श्री अराग्ची ने कल ईरान के सरकारी टेलीविजन को दिए एक साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा कि ईरान की ओर से जो होना चाहिए उसे स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। अमेरिका ने अभी तक वार्ता पर कोई टिप्पणी नहीं की है। व्हाइट हाउस ने टिप्पणी के अनुरोध पर तत्काल कोई जवाब नहीं दिया है। ईरान और अमेरिका ने कल तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर घंटों अप्रत्यक्ष वार्ता की, लेकिन बिना किसी समझौते के वार्ता समाप्त हो गई। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए कहा कि वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री अल बुसैदी ने कहा कि तकनीकी स्तर की वार्ता अगले सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुख्यालय वियना में जारी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने के लिए एक समझौते की मांग कर रहे हैं और अमेरिका ने इस क्षेत्र में विमानों और युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा तैनात कर दिया है, जिसके चलते क्षेत्र में तनाव चरम पर है। दूसरी ओर वार्ता समाप्त होने से ठीक पहले ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बताया कि तेहरान यूरेनियम संवर्धन जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर इजराइल में अमेरिकी दूतावास ने गैर आपातकालीन कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वेच्छा से देश छोड़ने की अनुमति दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का यह निर्णय इजराइल में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच आया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर अफगानिस्तान के जवाबी हवाई हमलों से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। रूस की समाचार एजेंसी तास के अनुसार अफगान सशस्त्र बलों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद के पास काकुल गांव में एक परमाणु संयंत्र और एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। सैकड़ों मृतकों और घायलों को इस्लामाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजधानी इस्लामाबाद और कई स्थानों पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने बताया कि अफगान वायुसेना ने आज सुबह इस्लामाबाद, नौशेरा, जमरूद और एबटाबाद में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि सीमा पर लड़ाई में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 2 सैन्य अड्डे तथा 19 चौकियां नष्ट कर दी गईं। काबुल, कंधार और पक्तिया पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद अफगानिस्तान ने ये हमले किए। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत में सहयोग के लिए ईरान तैयार है। रूस ने भी दोनों देशों से कूटनीतिक माध्यमों से आपसी मतभेद दूर करने का आग्रह किया है। इससे पहले भारत ने रमजान के दौरान महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों पर पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। बलूच स्वतंत्रता समर्थक नेता हुरबैर मर्री ने आज अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हालिया हमलों की निंदा करते हुए अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर सवाल उठाने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की है। उन्होंने बलूच और पख्तून लोगों की हत्याओं सहित ऐतिहासिक शिकायतों को उजागर किया और आक्रामकता की निंदा करते हुए अफगानिस्तान के लिए बलूच समुदाय के दीर्घकालिक समर्थन की पुष्टि की। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों की चीन द्वारा की गई आलोचना को खारिज कर दिया है। श्री कोइजुमी ने कहा कि चीन निरंतर दुष्प्रचार अभियान के माध्यम से जापान को सैन्यवादी देश के रूप में चित्रित करता रहा है। उन्होंने कहा कि ये नीतिगत बदलाव क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति से प्रेरित है। नेपाल में आगामी चुनाव के मद्देनजर भारत के सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल की सीमा सुरक्षा बल के बीच समन्वय बैठकें आयोजित की जा रही हैं। नेपाल में आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव के संदर्भ में सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवेश, तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए उत्तराखंड के चंपावत में नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल और भारत के सीमा सुरक्षा बल के बीच उप महानिरीक्षक स्तर की समन्वय बैठक आयोजित की गई। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 4 दिन की यात्रा पर आज मुंबई पहुंचे। श्री कार्नी की पदभार ग्रहण करने के बाद ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार श्री कार्नी भारतीय और कनाडा के हितधारकों के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। श्री कार्नी 2 मार्च को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में शामिल होंगे। भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन वर्तमान में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौबटिया में जारी है। 24 फरवरी से शुरू हुआ यह अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। दोनों देशों के कुल 120 सैनिक इस अभ्यास में भागीदारी कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत INS तरंगिणी आज त्रिकोमाली पहुंचा। ये भारत की समुद्री सहयोग पर पहल मित्रता के सेतु के अंतर्गत श्रीलंका के साथ नौसैनिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। त्रिकोमाली यात्रा पूरी करने के बाद पोत कोलंबो के लिए रवाना होगा। और महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 5 विकेट से हरा दिया है। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल भी कर ली है। इसके अलावा कोलंबो में T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 160 रन का लक्ष्य दिया है। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 18 ओवर में 6 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 11 वर्षों में अपनी क्षमता को पहचाना है और सरकार इसे साकार करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले किए, 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों की चीन द्वारा की गई आलोचना को खारिज किया। और महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।